एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, ज्ञान गोष्ठी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के एक ऐसे कह सकते हैं चमत्कार की बात करने वाले हैं जो हम सबके साथ हुआ है।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन शायद हमने कभी उस पर इतना सोचा नहीं। कैसे एक अकेली कोशिका, सिर्फ एक कोशिका, वो निषेचित अंडा खरबों कोशिकाओं वाले एक पूरे इंसान में बदल जाती है।
ये सवाल ही अपने आप में हैरत अंगेज है।
बिल्कुल,
और इसी हैरत अंगेज सफर को समझने के लिए आज हम बात करेंगे विकासमूलक जीव विज्ञान यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, और खास तौर पर लुईस वॉल्पर्ट के जो जबरदस्त विचार रहे हैं इस बारे में उनकी मदद से।
अच्छा,
वॉल्पर्ट का काम हमें ये समझने में मदद करता है कि कोशिकाएं कैसे जानती हैं कि उन्हें क्या बनना है, कहाँ जाना है। और ये सिर्फ कोई पुराने कहानी नहीं है, ये आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये समझ हमें बीमारियों को, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को, और यहाँ तक कि भविष्य की जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जैसे रीजेनरेटिव मेडिसिन, उनको समझने की एक चाबी देती है।
मतलब ये हमारे अपने ही बनने की कहानी है।
सही कहा।
और इस कहानी को बताने वाले हैं लुईस वॉल्पर्ट। 1929 में जन्मे, 2021 में उनका देहांत हुआ। दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए थे, लेकिन जाने गए एक ब्रिटिश विकासमूलक जीव विज्ञानी के तौर पर।
हाँ,
वो सिर्फ एक बड़े वैज्ञानिक ही नहीं थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रोफेसर मेरिटस थे, रॉयल सोसाइटी के फेलो थे, बल्कि एक कमाल के लेखक और ब्रॉडकास्टर भी थे।
अच्छा।
उनकी सबसे बड़ी खासियत शायद यही थी कि वो मुश्किल से मुश्किल वैज्ञानिक बातों को भी बहुत बहुत ही साफ तरीके से, समझदारी से और एक जोश के साथ आम लोगों तक पहुंचा देते थे।
ये तो बड़ी बात है, क्योंकि विज्ञान को सरल बनाना आसान नहीं होता।
बिल्कुल।
और वॉल्पर्ट शायद इसीलिए इतने सही व्यक्ति थी इस विषय पर बात करने के लिए। पहली बात तो वो खुद इस फील्ड के मतलब पायनियर थे, उनका काम बहुत अहम रहा है।
जैसे कि?
जैसे उनका वो फ्रेंच फ्लैग मॉडल,
हाँ,
1960 के दशक के आखिर में दिया था उन्होंने। आज भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में उसे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। वो इतनी खूबसूरती से बताता है कि कोशिकाओं को अपनी जगह का अंदाजा कैसे होता है।
फ्रेंच फ्लैग मॉडल, दिलचस्प नाम है।
हाँ, और दूसरी बात, वो विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में उस्ताद थे। मुश्किल चीज़ों को समझाने के लिए बड़ी अच्छी उपमाएं, एनालॉजीज इस्तेमाल करते थे। जैसे कोई आर्किटेक्ट जो सिर्फ नक्शा ना दिखाए बल्कि ये भी बताए कि भाई नींव कैसे काम करती है, दीवारें कैसे टिकती हैं। वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, कहानी सुनाने वाले भी थे।
तो फिर उनके काम का निचोड़ क्या है, उनके विचारों का मुख्य बिंदु क्या है?
उनके काम का दिल ये है कि एक भ्रूण का जो विकास है वो कोई जादू नहीं है।
अच्छा।
बल्कि वो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यानी आत्म संगठन की एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, सलीकेदार और लॉजिकल प्रक्रिया है। सब कुछ पहले से तय जेनेटिक नियमों और फिजिक्स के सिद्धांतों के हिसाब से होता है।
उनका काम उस बुनियादी सवाल का जवाब देता है कि भाई एक कोशिका को कैसे पता चलता है कि उसे हाथ की कोशिका बनना है या दिमाग की, और उसे अपनी सही जगह पर पहुंचना कैसे है।
और इस पहेली का जवाब, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, वो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन में छुपा है।
बिल्कुल।
स्थिति संबंधी जानकारी, यही कुंजी है। सोचिए, कोशिकाएं अपना भविष्य, मतलब त्वचा बनेंगी या मांसपेशी, ये इस आधार पर तय करती हैं कि उस विकास करते हुए भ्रूण में उनकी लोकेशन क्या है।
लोकेशन? कैसे पता चलती है लोकेशन? कोई गूगल मैप्स होता है उनके पास?
गूगल मैप्स तो नहीं, लेकिन एक तरह का सेल्युलर जीपीएस जरूर होता है। ये लोकेशन पता चलती है कुछ खास केमिकल संकेतों से। इन्हें कहते हैं मॉर्फोजन।
मॉर्फोजन?
हाँ, ये मॉर्फोजन ही हर कोशिका को भ्रूण के नक्शे में उसकी जगह बताते हैं। और वॉल्पर्ट हमें इसी पूरी यात्रा पर ले जाते हैं, निषेचन से शुरू करके गैस्ट्रुलेशन, पैटर्न बनना, कोशिकाएं कैसे खास बनती हैं, शरीर का आकार कैसे बनता है, और फिर इन सब का आज के विज्ञान जैसे स्टेम सेल वगैरह से क्या कनेक्शन है।
ये तो वाकई एक पूरी यात्रा है। चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं इसे। शुरुआत कहाँ से होती है?
शुरुआत होती है निषेचन से, फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो बनता है युग्मनज यानी जायगोट, वो पहली कोशिका जिसमें हमारे जीवन का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है।
हाँ।
फिर शुरू होता है क्लीवेज, कोशिकाएं तेजी से बटना शुरू करती हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, और ब्लास्टुला नाम की एक खोखली गेंद जैसी चीज बन जाती है।
ब्लास्टुला?
हाँ, और यहीं से खेल दिलचस्प होने लगता है। कोशिकाएं दिखने में भले ही एक जैसी हों, पर अपनी जगह के हिसाब से उनमें सटल अंतर आने शुरू हो जाते हैं।
और फिर आता है वो चरण जिसे वोल्पर्ट सबसे जरूरी मानते थे, गैस्ट्रुलेशन।
एग्जैक्टली, वोल्पर्ट ने कहा था मजाक में ही सही कि जन्म, शादी या मौत नहीं बल्कि गैस्ट्रुलेशन ही असल में आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी वक्त है।
सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है।
हाँ, पर बायोलॉजिकली ये काफी हद तक सही है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान वो जो खोखली गेंद थी वो एकदम नाटकीय तरीके से खुद को रीअरेंज करती है, अंदर की तरफ मुड़ती है, परते बनाती है।
परते हैं? कैसी परते हैं?
तीन मुख्य परते, एक्टोडर्म जिससे हमारी त्वचा, नर्वस सिस्टम वगैरह बनता है, मीजोडर्म जिससे मांसपेशियां, हड्डियां, खून बनता है, और एंडोडर्म जिससे हमारी आंतें और उनसे जुड़े अंग जैसे लिवर, पैंक्रिया वगैरह बनते हैं।
बाप रे, मतलब शरीर का पूरा खाका यहीं तैयार हो जाता है।
बिल्कुल, बॉडी प्लान जिसे कहते हैं, और दिशाएं भी यहीं तय होती हैं, सिर किधर होगा, पैर किधर, पीठ किधर, पेट किधर। यहीं ये भी साफ हो जाता है कि जीवन धीरे धीरे जटिल होता है, एपिजेनेसिस। ऐसा नहीं कि कोई पहले से बना हुआ छोटा सा इंसान बस बड़ा होता जाता है, प्री फॉर्मेशनिज्म।
कमाल है, तो गैस्ट्रुलेशन ने कोशिकाओं को उनकी मोटी मोटी जगह बता दी कि तुम एक्टोडर्म वाली हो, तुम मीजोडर्म वाली, लेकिन अब उन्हें अपनी एकदम सटीक पहचान कैसे मिलती है? जैसे किसी कोशिका को कैसे पता कि उसे उंगली की टिप बनना है, कलाई नहीं?
यहीं पर वो फ्रेंच फ्लैग मॉडल आता है।
हाँ, यहीं पर।
ये मॉडल जो है वो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन के सिद्धांत को समझाने का एक बहुत ही सरल और पावरफुल तरीका है।
कैसे काम करता है?
अब कल्पना कीजिए कि कोशिकाओं की एक लाइन है,
ठीक है,
और मान लीजिए कि एक सिरे पर कोई खास केमिकल, वही मॉर्फोजन, बन रहा है और फैल रहा है।
ठीक है,
तो जाहिर है जहां वो बन रहा है उस सिरे पर उसकी मात्रा, कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी।
हाँ,
और जैसे जैसे आप उस सिरे से दूर जाएंगे वो मात्रा कम होती जाएगी, एक ढाल बन जाएगी, एक ग्रेडियंट।
अच्छा, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट।
बिल्कुल। अब कोशिकाएं क्या करती हैं, वो इस केमिकल की मात्रा को महसूस करती हैं या पढ़ती हैं, और इस मात्रा से उन्हें पता चल जाता है कि वो उस लाइन में कहाँ पर है, स्रोत के पास है, बीच में है या दूर है। वोल्पर्ट ने इसे समझाने के लिए फ्रेंच झंडे का उदाहरण लिया। उसमें तीन रंग की पट्टियां होती हैं, नीला, सफेद, लाल। तो मान लीजिए कोशिकाएं मॉर्फोजिन की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन रेंज के जवाब में अलग अलग जीन चालू करती हैं। जैसे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो नीला वाला जीन चालू हो गया, बीच की कॉन्सेंट्रेशन है तो सफेद वाला, और कम कॉन्सेंट्रेशन है तो लाल वाला।
वाह, मतलब एक सिंपल से केमिकल ग्रेडियंट से इतना व्यवस्थित पैटर्न बन सकता है?
हाँ, यही इस मॉडल की खूबी है। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण नियम से जटिल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वाकई एक सेलुलर जीपीएस की तरह।
ये तो सचमुच दिमाग को झकझोरने वाली बात है कि इतनी कॉम्प्लेक्स बनावट इतने सरल सिद्धांत पर टिकी हो सकती है। और आपने कहा इसका संबंध विकासवाद यानी एवोल्यूशन से भी है, वो इवो डेवो क्या चीज है?
हाँ, इवो डेवो यानी एवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये समझना कि डेवलपमेंट और एवोल्यूशन कैसे जुड़े हैं, ये पिछले कुछ दशकों की साइंस की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है।
कैसे जुड़े हैं ये?
वॉल्पर्ट बताते हैं कि जिन जीन्स का इस्तेमाल करके भ्रूण विकसित होता है, मतलब जो डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो पूरे एनिमल किंगडम में, मतलब मक्खी से लेकर इंसान तक, आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे हैं। वो कंजर्व्ड हैं, बदले नहीं है ज्यादा।
एक जैसे हैं मतलब?
हॉक्स जीन, हॉक्स जीन्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये मास्टर कंट्रोल जीन होते हैं। ये तय करते हैं कि शरीर के अलग अलग हिस्से कहाँ बनेंगे, सिर कहाँ, धड़ कहाँ, हाथ पैर कहाँ।
तो क्या फल मक्खी और इंसान में एक ही तरह के हॉक्स जीन होते हैं?
काफी हद तक हाँ, संरचना और काम करने के तरीके में बहुत समानता है। वही हॉक्स जीन जो एक फल मक्खी को बताते हैं कि उसके पंख और पैर कहाँ लगने हैं, वही जीन इंसानों और चूहों में भी शरीर के हिस्सों को सही जगह पर बनाने में मदद करते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के मनके हैं या हाथ पैर हैं।
ये तो अविश्वसनीय है,
है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों में जो इतनी विविधता हम देखते हैं वो एकदम नए नए जीन बनाने से उतनी नहीं आई, जितनी कि उन्हीं पुराने साझे जेनेटिक टूल किट को अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगह पर और अलग अलग मात्रा में इस्तेमाल करने से आई है।
अच्छा,
एक तरह से हाथी और फल मक्खी का डेवलपमेंट एक ही बेसिक म्यूजिक की अलग अलग वेरिएशंस है। ये जीवन की गहरी एकता दिखाता है।
वाह, तो ठीक है, कोशिकाओं को अपनी जगह पता चल गई। पोजिशनल इन्फॉर्मेशन से उन्हें पता चल गया कि कौन से मास्टर जीन जैसे हॉक्स जीन इस्तेमाल करने हैं। अब अगला कदम क्या है? अब उन्हें सच में वो खास कोशिका बनना है जैसे मसल सेल या नर्व सेल।
बिल्कुल। इसके बाद दो मुख्य चीजें होती हैं। पहला है कोशिका विभेदन,
सेल डिफरेंशिएशन।
विभेदन,
हाँ,
मतलब स्पेशलाइजेशन। कोशिका अब एक खास तरह का काम करने के लिए तैयार होती है। जैसे एक मांसपेशी कोशिका उन जीन्स को चालू करती है जो मांसपेशी के प्रोटीन बनाते हैं, एक नर्व कोशिका न्यूरॉन वाले जीन चालू करती है। और मजे की बात यह है कि दोनों में पूरा डीएनए सेट एक जैसा ही है, बस कौन से जीन ऑन है और कौन से ऑफ, ये फर्क है।
समझ गया।
और एक बार कोशिका विभेदित हो गई तो आमतौर पर वो वैसी ही बनी रहती है। और दूसरा बड़ा कदम है मॉर्फोजेनेसिस।
मॉर्फोजेनेसिस मतलब?
मॉर्फो मतलब आकार, जेनेसिस मतलब बनना, यानी आकार का निर्माण। शरीर सिर्फ अलग अलग तरह की कोशिकाओं का ढेर तो नहीं है ना, उनका एक खास आकार है, एक संरचना है, हाथ का आकार है, दिल का आकार है।
हाँ, सही।
तो मॉर्फोजेनेसिस में कोशिकाएं सिर्फ बनती नहीं बल्कि सही जगह पर जाती हैं, माइग्रेशन, अपना आकार बदलती हैं, एक दूसरे से सही तरीके से चिपकती हैं, सेल एडहेजन,
और यहां तक कि योजना बनाकर मरती भी है।
मरती हैं?
विकास में मरने का क्या काम? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता?
हाँ, सुनने में जरूर लगता है, लेकिन योजनाबद्ध कोशिका मृत्यु, जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं, वो विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी है।
कैसे? कोई उदाहरण?
सबसे आम उदाहरण है हमारी उंगलियों और पैर की उंगलियों का बनना। जब हमारे हाथ पैर की कलियां, लिम्ब बड्स, बन रही होती हैं, तो शुरुआत में वो चप्पू जैसी होती हैं। उंगलियों के बीच में भी कोशिकाएं भरी होती हैं।
अच्छा।
फिर एपोप्टोसिस के जरिए इन बीच वाली कोशिकाओं को खत्म किया जाता है ताकि उंगलियां अलग अलग हो सकें। अगर ये ना हो तो हमारी उंगलियां जुड़ी रह जाए।
अरे हाँ, सही कहा।
तो देखा, बनाने के लिए मिटाना भी जरूरी है। मॉर्फोजेनेसिस असल में जेनेटिक्स और फिजिक्स का मिलाजुला खेल है। कोशिकाएं सिर्फ जेनेटिक कोड फॉलो नहीं करती, वो एक दूसरे पर भौतिक दबाव डालती हैं, खिंचाव महसूस करती हैं, अपने आसपास के माहौल के हिसाब से चलती हैं।
ये सारे सिद्धांत, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन, जीन एक्शन, मॉर्फोजेनेसिस, इन सबको एक साथ काम करते हुए देखने के लिए वोल्पॉट ने कोई खास उदाहरण दिया है?
हाँ, उन्होंने चिकन के भ्रूण में पंख या पैर के विकास का उदाहरण बहुत इस्तेमाल किया है। अंग विकास, लिम्ब डेवलपमेंट, इन सभी प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक बेहतरीन मॉडल सिस्टम है।
कैसे काम करता है अंगों का विकास?
देखिए, जो हाथ या पैर की कली बन रही होती है उसमें कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह होता है, उसे कहते हैं जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, ZPA। ये ZPA एक तरह का सिग्नलिंग सेंटर है। ये एक मॉर्फोजन बनाता है जिसका नाम है सोनिक हेजहॉग।
सोनिक हेजहॉग, ये नाम तो सुना हुआ लगता है, वीडियो गेम जैसा।
हाँ, वहीं से लिया गया है। तो ये सोनिक हेजहॉग उस कली में फैलता है और एक ग्रेडियंट बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रेंच फ्लैग मॉडल में बात की थी।
अच्छा।
और कोशिकाएं इस ग्रेडियंट में अपनी जगह को पढ़कर तय करती हैं कि उन्हें कौन सी उंगली बनानी है, अंगूठे वाली तरफ जहां कंसंट्रेशन कम है, या छोटी उंगली वाली तरफ जहां ZPA है और कंसंट्रेशन ज्यादा है।
और क्या इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? मतलब कैसे पता चला कि ये वाकई ऐसे ही काम करता है?
बिल्कुल, और यही तो विज्ञान का मजा है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने एक भ्रूण से ZPA को काटा और उसे दूसरे भ्रूण की लिम्ब बड में उस जगह लगा दिया जहां आमतौर पर अंगूठा बनता है, यानी सोनिक हेजहॉग की कंसंट्रेशन कम होती है।
अच्छा।
हाँ,
तो क्या हुआ?
नतीजा ये हुआ कि उस जगह पर भी छोटी उंगली जैसे स्ट्रक्चर बनने लगे, मतलब उंगलियों की एक मिरर इमेज कॉपी बन गई, जैसे छोटी उंगली, फिर अनामिका, मध्यमा, और फिर से अनामिका, छोटी उंगली।
अरे वाह।
ये प्रयोग सीधे तौर पर दिखाता है कि ZPA से निकलने वाला मॉर्फोजिन ही पैटर्न तय कर रहा है। ये पोजिशनल इन्फॉर्मेशन का एकदम पक्का सबूत है।
ये तो कमाल की बात है, पर ये सब तो भ्रूण के विकास की बातें हुई। क्या विकास जन्म के साथ ही रुक जाता है? वोल्पॉट ने बाद के जीवन के बारे में भी कुछ कहा है।
हाँ, विकास पूरी तरह रुकता नहीं है बल्कि बदल जाता है। वोल्पट लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। स्तनधारियों में वाई क्रोमोसोम पर एक जीन होता है, SRY जीन। अगर ये है तो पुरुष वाली विशेषताएं विकसित होती हैं, नहीं है तो महिला वाली। ये भी विकास का एक हिस्सा है जो जन्म के बाद या उसके आसपास होता है।
और उम्र बढ़ना, एजिंग?
उम्र बढ़ने को भी कुछ वैज्ञानिक विकास के कार्यक्रम का ही एक तरह से अंतिम चरण मानते हैं, हालांकि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इस पर अभी भी बहुत बहस और रिसर्च चल रही है। फिर कुछ जानवरों में पुनर्जनन की गजब की क्षमता होती है।
पुनर्जनन, जैसे छिपकली की पूंछ?
हाँ, या उससे भी ज्यादा, जैसे सालामांडर नाम का जीव अपना पूरा का पूरा कटा हुआ पैर दोबारा उगा सकता है। ये दिखाता है कि विकास के वो रास्ते वयस्कों में भी दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं, कम से कम कुछ जीवों में।
और यहीं से शायद भविष्य की उम्मीदें जैसे स्टेम सेल थेरेपी जुड़ती हैं।
एकदम सही। स्टेम सेल्स वो मास्टर कोशिकाएं हैं जिनमें कई अलग अलग तरह की कोशिकाएं बनने की क्षमता होती है।
दो तरह की होती हैं शायद, एम्ब्रियोनिक और एडल्ट।
हाँ, मोटे तौर पर भ्रूणीय स्टेम सेल्स तो लगभग किसी भी तरह की कोशिका बन सकती हैं। वयस्क स्टेम सेल्स थोड़ी सीमित होती हैं, वो जिस ऊतक में पाई जाती हैं उसी तरह की कोशिकाएं ज्यादा बनाती हैं।
और इनका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है?
उम्मीद ये है कि इनकी मदद से खराब या क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक किया जा सकेगा, जैसे दिल के दौरे के बाद खराब हुई मांसपेशियां, या जलने से खराब हुई त्वचा, या रीढ़ की हड्डी की चोट। इनमें स्टेम सेल से नई कोशिकाएं बनाकर इलाज करने की कोशिशें चल रही हैं। है कि जीव अपना अंतिम आकार कैसे पाते हैं, मतलब ग्रोथ और साइज कंट्रोल कैसे होता है, ये सब विकास मूलक जीव विज्ञान के ही दायरे में आता है।
तो इस पूरी काफी गहरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? वो कौन से बड़े विचार हैं जो हमें वॉलपर्ट के काम से जरूर समझने चाहिए?
मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे अहम है स्थिति संबंधी जानकारी, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन का आइडिया। कोशिका का भाग्य उसकी जगह तय करती है। वो फ्रेंच फ्लैग मॉडल इसी का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी अक्सर सिंपल नियमों से ही पैदा होती है।
दूसरा, वो सार्वभौमिक जेनेटिक टूलकिट, यूनिवर्सल जेनेटिक टूलकिट वाली बात और इवो डेवो, कि सारे जानवर चाहे मक्खी हो या इंसान विकास के लिए एक जैसे बुनियादी जीन इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ जीवन की गहरी एकता दिखाता है बल्कि ये भी कि प्रकृति कैसे चीजों को रिसाइकिल करती है कह सकते हैं।
हाँ, एफिशिएंसी। तीसरा, कि विकास पे एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग प्रक्रिया है। कोई एक सेंट्रल कंट्रोलर नहीं है जो सब कुछ देख रहा हो। भ्रूण लोकल लेवल पर कोशिकाओं की बातचीत से जेनेटिक नियमों और भौतिकी के सिद्धांतों का पालन करते हुए खुद ब खुद बनता है। एक बॉटम अप प्रोसेस है ये।
चौथा, वो गैस्ट्रुलेशन का महत्व, जिसे वोल्पर्ट ने इतना जोर देकर कहा था। वो शुरुआती स्टेज हमारी पूरी शारीरिक बनावट की नींव रखता है।
पांचवा, जीन और भौतिकी का तालमेल। आकार का बनना यानी मॉर्फोजेनेसिस सिर्फ जेनेटिक प्रोग्रामिंग नहीं है। कोशिकाओं का हिलना, डुलना, चिपटना, दबाव डालना, ये फिजिकल फोर्सेस भी उतनी ही जरूरी हैं।
और छठा, जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, वो है बुनियादी विज्ञान और मेडिसिन का सीधा कनेक्शन। बर्थ डिफेक्ट्स को समझना हो, कैंसर को एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम की तरह देखना हो, या रीजेनरेटिव मेडिसिन की उम्मीदें हों, इन सब की जड़ें डेवलपमेंटल बायोलॉजी की समझ में हैं।
वॉल्पर्ट के काम में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं और याद रह जाते हैं।
हाँ, जैसे वो गैस्ट्रोलेशन वाली बात, जन्म, विवाह या मृत्यु नहीं, बल्कि गैस्ट्रोलेशन वास्तव में आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये सुनने में भले ही नाटकीय लगे, पर यह उस शुरुआती अनदेखी जैविक प्रक्रिया की अहमियत बताता है जिसने हमारे शरीर की नींव रखी। ये पर्सपेक्टिव बदल देता है।
बिल्कुल। और दूसरा, वो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन को सरल बनाने वाला विचार। एक कोशिका अपनी स्थिति से जानती है कि उसे क्या बनना है, जैसे कि उसके पास GPS हो। ये कोशिका की समझदारी को किसी रहस्य के पर्दे से निकालकर एक ठोस केमिकल मैकेनिज्म से जोड़ता है।
और तीसरा, इवोडेवो का सार। हाथी और फल मक्खी का विकास एक ही प्राचीन विषय पर भिन्नताएं हैं। अविश्वसनीय विविधता एक ही सार्वभौमिक अनुमानिक टूलकिट को थोड़े अलग तरीकों से तैनात करके उत्पन्न होती है। ये विकास की कंजूसी और क्रिएटिविटी दोनों दिखाता है, और ये भी कि हम सब जीव कितने गहरे लेवल पर जुड़े हुए हैं।
तो अब असली सवाल ये है कि इन सब वैज्ञानिक बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है, इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है?
हाँ, ये जानना जरूरी है।
सबसे सीधा असर तो स्वास्थ्य और बीमारी की हमारी समझ पर पड़ता है। जन्मजात विकृतियां क्यों होती हैं, जैसे स्पाइना बिफिडा या कटे होंठ और तालू, क्लेफ्ट पैलेट, ये समझना हमें इनके रोकथाम और इलाज के तरीके खोजने में मदद करता है।
और कैंसर वाली बात आपने कही थी।
हाँ,
कि वो विकास का बिगड़ा रूप है।
हाँ, कई कैंसर इसलिए होते हैं क्योंकि कोशिकाएं उन जीन्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगती हैं जो सामान्य विकास के दौरान जरूरी होते हैं। वो कंट्रोल खो देती हैं, अपनी जगह भूल जाती हैं और बेतहाशा बढ़ने लगती हैं। कुछ कुछ वैसी ही जैसे भ्रूण की कोशिकाएं बढ़ती हैं पर बिना किसी रोक टोक के। इस नज़रिए से कैंसर के इलाज के नए टारगेट मिल सकते हैं।
और रीजनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल से इलाज की बातें तो आजकल बहुत होती हैं।
ये वाकई एक बहुत उम्मीद जगाने वाला फील्ड है। अगर हम ये जानते हैं कि शरीर खुद को कैसे बनाता है तो शायद हम उसे चोट या बीमारी के बाद खुद की मरम्मत करने में मदद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि खराब हो चुके दिल की मांसपेशियों को दोबारा बनाया जा सके या रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद नर्व कनेक्शन फिर से जोड़े जा सकें। इन सब में स्टेम सेल्स और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके इलाज ढूंढने की कोशिशें जारी हैं।
इसके अलावा ये जो ज्ञान है ये हमें सूचित नैतिक निर्णय लेने में भी मदद करता है ना। आजकल इतने सारे मुद्दे हैं, IVF, क्लोनिंग, स्टेम सेल रिसर्च, जेनेटिक इंजीनियरिंग।
बिल्कुल, इन पर सिर्फ सुनी सुनाई बातों या भावनाओं के आधार पर राय बनाने की बजाय अगर हमें इनके पीछे का विज्ञान पता हो तो हम ज्यादा समझदारी से तर्क के साथ बहस कर सकते हैं, अपनी राय बना सकते हैं। वैज्ञानिक साक्षरता बहुत जरूरी है आज के जमाने में।
सही कहा।
और शायद सबसे गहरा असर जो है वो हमारे खुद और प्रकृति को देखने के नज़रिए पर पड़ता है। ये जानना कि हम सब खरबों कोशिकाओं के एक चलते फिरते डायनामिक समुदाय हैं जो सब सिर्फ एक कोशिका से शुरू हुए थे, ये अपने आप में एक विस्मयकारी एहसास है।
हाँ, ये तो है।
ये समझना कि हम एक मक्खी या एक मेंढक के साथ भी बुनियादी जेनेटिक मशीनरी शेयर करते हैं, ये जीवन की एकता का एक गहरा एहसास कराता है। ये हमें प्रकृति की जटिलता और उसकी सुंदरता की सिर्फ तारीफ करना नहीं सिखाता बल्कि उसकी एक गहरी समझ भी देता है।
इस पूरी बातचीत में मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो शायद एपोप्टोसिस ही थी, कि योजनाबद्ध कोशिका मृत्यु भी विकास के लिए इतनी जरूरी है। ये सोचना कि बनाने के लिए मिटाना भी पड़ता है काफी अलग सा विचार है। और मुख्य सीख मेरे लिए ये है कि जीवन की ये जो अद्भुत कॉम्प्लेक्सिटी है ये अक्सर बहुत ही सरल और सुरुचिपूर्ण नियमों पर आधारित होती है, जैसे वो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन
भी इतने बुनियादी स्तर पर एक है। ये वाकई कमाल का है। और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि जो बेसिक साइंस रिसर्च होती है उसका हमारी जिंदगी पर, खासकर स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, कितना सीधा और कितना गहरा असर पड़ता है। विकास कैसे काम करता है ये समझना सिर्फ एक अकेडमिक पहेली सुलझाना नहीं है, ये खुद को और अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से समझने का एक जरिया है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर प्रकृति इतने सिंपल नियमों से इतनी जटिलता पैदा कर सकती है तो हम इन सिद्धांतों से और क्या क्या सीख सकते हैं, शायद इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर में या कहीं और।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।